रंजना में, आप डॉक्टर हैं, साथ साथ आप गुजरात के कई सेवा केंद्रों पर सेवाएं अपनी देती रही। वर्तमान समय आप बड़ौदा में सेवा अपनी क्षेत्रीय सेवा केंद्रों की संचालिका हैं, एक कुशल संचालिका। जैसा ही आपका नाम है निरंजना, वैसे ही आप नम्र, निर्माण और सरल चित हैं। साथ साथ आपकी विशेषता कि जब हमने कल आपसे बात की तो वैसे तो आप सब जानते हैं कि आज सम्मान में हर एक स्थान की बहनें आई हुई हैं, और उन बहनों का सम्मान हो रहा हो तो एक निमित्त बहन को कितने काम होते हैं, परंतु उन कामों को छोड़ करके भी हम ईश्वरीय सेवा में निमित्त हैं, इस जवाबदारी को पहले समझा और वह जवाबदारी समझ करके हमारे बीच उपस्थित हुई और उन्होंने शीघ्र हाँ कहा। इसलिए आपका धन्यवाद कि आप उस बात को समझ सके कि जो उल्लास नगर से इतनी दूर से बाबा के घर आए हैं उन बच्चों को किस चीज की आवश्यकता है, और वह कला जो आपके अंदर है वो कला आप दूसरों को दे सकती हैं, पालना कर सकती हैं। इसलिए आपने अपनी उस जिम्मेदारी को समझा, ये विशेषता है। तो ऐसी विशेष आत्मा का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आपने भी देश विदेश में कई स्थानों पर जाकर के ईश्वरीय संदेश देने का कार्य किया है। हाँ जी, मम्मा की दृढ़ धारणा है, हाँ जी है? और दूसरी बात, हुकुम ही हुकुम चला रहा है, ये धारणा आपकी प्रैक्टिकल है। तो मैं निरंजना बहन से कहती हूँ कि स्वस्थिति में स्थित रहने की विधि क्या है वो हम सभी के आगे स्पष्ट करेंगे। आदरणीय निरंजना बहन।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी बहुत बहुत लकी आत्माएं हैं, ऐसा लगता है लकी है, क्योंकि पांडव भवन में जो बाबा की साकार, बाबा की कर्म भूमि है, ऐसे स्थान पर भक्ति करने का विशेष चांस मिला है। यहाँ के वाइब्रेशंस, वातावरण ही इतने स्ट्रांग है, वो आप फील करते होंगे, है ना? सबका ये अनुभव है कि यहाँ आकर के योग लगाना नहीं पड़ता है परंतु लग जाता है ना? फिर भी हम सभी जिस राह पर है, रूहानी राह पर है हम सभी, और इस रूहानी राह से हमें जिस मंजिल पर पहुंचना है, किस मंजिल पर पहुंचना है? संगम युग में बाबा हम सभी आत्माओं को इतनी ऊंची नजर से देखते हैं, बाबा के हम सभी के प्रति ऐसी अपेक्षा है अभी कि आप सभी के चेहरे और चलन के द्वारा बाबा का साक्षात्कार। हमें यही संदेश सारे विश्व की आत्माओं को पहुंचाना है ना, कि भाई इस दुख की दुनिया से अगर छूटना है, अगर इस दुख की दुनिया में सुख का अनुभव करना है, तो उसके लिए स्वयं भगवान आया हुआ है, आप उसको पहचानो और उनकी श्रीमत पर चलो, ये संदेश है। परंतु ये संदेश कैसे देंगे? तो बाबा ने कहा है हमें कि आप बच्चों के चेहरे और चलन के द्वारा ये संदेश सबको मिले। तो हमारा चेहरा और हमारी चलन बाबा समान ऐसी बने जो हमें देख करके सबको प्रेरणा मिले। बाबा ने प्रैक्टिकल करके दिखाया है ना? तो उसका जो आधार है, हम जैसे कहते हैं कि फेस इज द मिरर ऑफ माइंड, फेस जो चेहरा है वो चेहरा मन का ही प्रतिबिंब है, जो अंदर में होता है वही चेहरे पर दिखाई पड़ता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बहुत जरूरी है कि हमारी जो आंतरिक स्थिति है, जिसको बाबा कहते स्वस्थिति है, आंतरिक स्थिति है, वो जितनी शक्तिशाली होगी, शक्तिशाली का अर्थ है रूहानी। कौन सी स्थिति चाहिए हमारी? रूहानी, रूहानी अर्थात आत्मिक, है ना। हमारी स्थिति जितनी रूहानी होगी, जितनी आत्मिक होगी, उतना चेहरे पर, कुछ दिन पहले ही बाबा ने कहा कि आपके व्यक्तित्व में वो आकर्षण आएगा। जितनी स्थिति रूहानी होगी उतना क्या होगा? आकर्षण होगा। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो हम तो आत्मा है ही, आत्मा तो हम है ही, फिर भी भान कौन सा रहता है? देहभान। हम आत्मा है उसमें कोई संशय नहीं है, हम आत्मा ही है, परंतु आत्मा होते हुए भी देह की स्मृति, और बाबा जो कहते देह के पदार्थ और देह के संबंधों में दिन रात हमारी बुद्धि इतनी बिजी रहती है कि वास्तव में हम आत्मा होते हुए भी भान हमेशा देह का और देह के पदार्थों में हमारा ध्यान रहता है, जिसको बाबा कभी कभी मूलियों में क्या कहते हैं, गोरख धंधे में, है ना। कहते ना बाबा कि भाई तुम घर में हो तो गोरख धंधे बहुत होते हैं, यहाँ है तो रूहानी, है ना। गोरख धंधे का अर्थ क्या है कि भाई देह के लिए ही सब कुछ करना पड़ता है, करना तो पड़ता ही है, करना तो पड़ता ही है, इसलिए करते हैं। परंतु बाबा कहते सब कुछ करते हुए, जैसे बाबा ने मूल में कहा था भाई घूमो फिरो खाओ पियो सब कुछ करो, परंतु आत्मस्मृति में करो। तो वो आत्मिक स्मृति सदा रहे, उसके लिए बाबा ने हमें कहा है कि स्मृति का स्थिति का आधार है स्मृति, और स्मृति का आधार है चिंतन, सोच। आप जो सोचते हैं, आप जिस बात का चिंतन करते हैं, वही आपकी स्मृति में रहता है, और जो आप लंबे समय तक जो बात स्मृति में रहती है वही हमारी स्थिति बन जाती है। क्योंकि जन्मों जन्म से हम देहभान में रहे हैं, जन्मों जन्म से, है ना। एक शरीर छोड़ा दूसरा लिया, दूसरा छोड़ा तीसरा लिया, करते 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 अभी हम अंतिम जन्म में पहुंच गए। और इस जन्म में भी क्या होता है, बच्चा जन्मता है तब से क्या करते हैं हम, उसका ध्यान, ये मम्मी है, ये पापा है, ये भाई है, ये बहन है, है ना। छोटा बच्चा होगा तो क्या करे, तू लड़की है या लड़का है, थोड़ा भी बात व्यवहार में ऐसा होगा, तू तो लड़की है, तू लड़का नहीं है, तो बोले तू लड़का है तू लड़की नहीं है, इतना अंदर में बिठा दिया जाता है। और हम सोचते सपन में भी हम देह भान को भूल नहीं सकते हैं। आपको अनुभव होगा कि सपन में भी यही देह की स्मृति और देह भान। एक बार ऐसे हुआ, आप राजा जनक को एक बार सपन आया, सपने में वो अपने महल से निकले बाहर और घूमने के लिए गए, दूर दूर तक चले गए, जंगल में चले गए, रास्ता भूल गए, टाइम हो गया, बहुत थक गए, बहुत भूख लगी थी, एक ऐसे गांव में जा गए, पहुंच गए कि वहां खाना बट रहा था, भंडारा चल रहा था, लाइन लगी थी, सब लोग लाइन में लगे थे, राजा जनक भी खुद लाइन में लग गए। सबको दो दो रोटी मिल रही थी, उसने भी रोटी ले लिया हाथ में, और जैसे वो रोटी खाने लगा तो एक कौवा आया और रोटी लेके चला गया। खूब भूख लगी थी, पर ये जो हुआ तो आंख खुल गई, तो हुआ कि अरे ये तो सपना था। उसने अपने गुरु से पूछा कि मैं कौन हूं, मैं राजा जनक हूं वो सत्य है, या मैं सपन में देखा कि मैं भिखारी हूं वो सत्य है, मैं हूं कौन, सत्य क्या, सपन सत्य है कि ये सत्य है? तो गुरु ने कहा, न तो राजा जनक है और न तो भिखारी है, पर दोनों समय तुमने जो महसूस किया कि मैं वही था, राजा जनक जब तुम बोलते हो तभी भी तुम मैं राजा जनक हूं या मैं भिखारी हूं, तो वो जो मैं है वो न राजा जनक है और न भिखारी है, वो मैं पर तू ध्यान केंद्रित कर, वो तू है। वो मैं कौन है? चैतन्य आत्मा है, तू उस पर ध्यान केंद्रित कर, तो वो इंपॉर्टेंट है। तो हम सारा दिन अपनी देह की स्मृति में रहते हैं, परंतु बाबा हमें कॉन्स्टेंट कहते हैं कि तुम कौन हो, तुम कौन हो? चैतन्य बिंदु आत्मा। हमें ये इतना सहज हो गया है शब्दों में आना कि हम बाबा कहते हैं तुम कौन हो? आत्मा। परंतु हम महसूस करते हैं, हमें क्या करना है? अंदर में वो महसूस करना है कि मैं इस ब्रुकुटी के बीच में, है ना, चमकने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। आत्मा ऐसे कहा जाता है कि आप ब्रुकुटी से अंदर एक लाइन करो और यहां से एक लाइन करो, दोनों जहां मिलता है, और साइंटिफिकली जिसको कहा जाता है कि अंदर में जहां पिनियल बॉडी है वहां पर आत्मा स्थित रहती है, स्टार, चैतन्य बिंदु, प्रकाश बिंदु, क्या है, अ पॉइंट ऑफ लाइट, जिसको हम कहते हैं चैतन्य प्रकाश बिंदु, कॉन्शियंट पॉइंट ऑफ लाइट, चैतन्य प्रकाश बिंदु। तो हमें ये महसूस करना है कि मैं अपने आप को इतना हल्का सा प्रकाश बिंदु महसूस कर रहा हूं, या हम अपने आप को भारी शरीर महसूस करते हैं, क्या महसूस करते हैं, है ना? मैं शरीर को चलाता हूं या शरीर मुझे चलाता है, क्या? हाँ हाँ, पर होता क्या है, उल्टा महसूस होता है, है ना? आपको लगता है कि हम आत्मा को लिए हुए चलते हैं, नहीं, बिंदु, ज्योति बिंदु, मैं प्रकाश बिंदु। तो जैसे एक गीत में भी आता है कि अपने मैंपन को बिंदु में समाओ। अभी हमारा मैंपन क्या है? फैला हुआ है हमारा मैंपन, देह और देह के संबंध और देह के पदार्थ, मैं और मेरा, मैं और मेरे में, मेरे में मेरा 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 होने के कारण जहां जहां मेरापन है, जिसको बाबा कहते हैं ममत्व, ममत्व अर्थात मेरापन, जहां 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 तक मेरापन फैला हुआ है वो समझो कि मैंपन फैला हुआ है, है ना? आज मुझे मेरा शरीर है तो शरीर को कुछ लगेगा तो मुझे फील, मतलब दर्द होगा, फील होगा, है ना? एक बात, मेरा शरीर है, मुझे फील होगा। अब आपका कोई संबंधी है, उसको लगा तो भी आपको फील होगा, है ना? जहां जहां आपका मेरापन है, जहां मेरापन नहीं है वहां आपको फील नहीं होगा, जहां मेरापन है वहां पर फील होगा। तो हमारा जो मैंपन और मेरापन इतना स्थूल में आ गया,
और वो इतना विस्तार है
कि हमें टाइम ही नहीं मिलता है।
हम क्या कहते हैं, हमें आत्म चिंतन करने का समय ही नहीं मिलता है। सुबह उठते हैं तब से हमें इस शरीर के सेवा में लगना पड़ता है, शरीर की सेवा में लगना पड़ता है ना, हर प्रकार से खाना पीना और हमारा आयोजन, हम हर प्रकार का आयोजन करते हैं। साल भर में भोजन बनाने लिए अनाज भरना पड़ेगा, मसाले भरने पड़ेंगे, मकान बनाना पड़ेगा, कपड़े बनाने पड़ेंगे, सब कुछ करना पड़ेगा, परंतु ये किस बात का समय नहीं मिलता, आत्मा को अपने स्थिति में स्थित होने का समय नहीं मिलता। हमारा क्यों उस तरफ ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि बाबा जो कहते हैं कि मन जो है, मन का स्वभाव ऐसा है कि मन को जहां सुख मिलेगा वहां ही जाएगा, ये मन का स्वभाव है। जहां आनंद मिलेगा वहां ही मन जाएगा, ये मन का स्वभाव है। अब तक हमने स्थूल बातों में सुख और आनंद अनुभव किया है, खाने में मजा आता है ना, अच्छा अच्छा खाने में मजा आता है, तो हमारा मन बुद्धि कहाँ जाएगा, उसमें ही बिजी हो जाएगा। कोई बोलेगा मुझे गुलाब जामुन बहुत पसंद है, एक व्यक्ति को समझो किसी को भी, तो घर में बोलेंगे गुलाब जामुन बनाओ, अब गुलाब जामुन बनाने में और रोटी सब्जी बनाने में अंतर आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो जहां मन जाएगा वहां ही हमारी सारी प्रवृत्ति, जैसी हमारी वृत्ति बनी हुई होगी वैसी ही हमारी प्रवृत्ति बनी रहती है, और इसका विस्तार इतना ज्यादा है। हमारी जो लाइकिंग है, हमारी जो पसंदगी है, वो इतनी वैरायटी में हो गई है, स्थूल में, पदार्थों में, कि हमारा मन दिन रात उसके अंदर बिजी रहता है। अब हमें अगर अपनी शक्ति स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, तो कहा जाता है कि सबसे शक्तिशाली संकल्प जो है, एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर था, उसने भी यही कहा कि ये सच बात है कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली संकल्प ये है कि मैं आत्मा हूं। इस संकल्प में व्यक्ति जितना स्थिर रह सकता है, इसलिए बाबा हमें बार बार कहते सारा दिन इस चिंतन में रहो कि मैं कौन हूं। एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताती हूं कि एक बार ऐसे हुआ कि एक राजा अपने पुत्र को, राजकुमार को, पढ़ाई के लिए कहां कोई गुरु के पास रखना चाहता था, ऐसा गुरु जो उसको अच्छा ज्ञान दे। तो वो गुरु को ढूंढने लगे, जिस गुरु के पास जाए तो गुरु से पहले यही पूछते थे कि भाई आप मेरे राजकुमार को पढ़ाएंगे तो उसके बदले मैं आपको मेरा आधा राज्य दूंगा। फिर पूछता था इस राज्य को आप क्या करोगे, और वो जवाब सुनकर के राजा का मन नहीं होता था कि हम इनके पास रखें। बहुत ढूंढ लिया, कोई गुरु मिल ही नहीं रहा था। फिर किसी ने आके समाचार दिया कि हमारे राज्य के बाहर ही एक है संत बैठे हैं, आप उनको ही बुला लीजिए, बहुत अच्छे हैं। तो उन्होंने कह के भेजा कि राजा आपको बुलाते हैं। तो संत ने जवाब दिया कि भाई मेरा कोई राजा नहीं है, मैं तो अपना ही राजा हूं, और अगर उनको अपने पुत्र को पढ़ाने के लिए रखना है तो वो आवे मेरे पास, मैं क्यों उनके पास जाऊं। बोला वो तो राजा है। बोला राजा है तो वो अपना राजा है, मेरा तो कोई राजा है ही नहीं। अच्छा भाई, तो राजा ने सोचा ठीक है चलो हम ही जाते हैं। तो वो गए राजकुमार को लेकर के गुरु से मिलने के लिए। गुरु से वही बात किया कि आप मेरे राजकुमार को पढ़ाओ तो मैं आपको आधा राज्य दूंगा। बोला राज्य को लेकर मैं क्या करूंगा, वो तुम्हारा काम राज्य संभालना, मेरा तो वो काम ही नहीं है, मेरे को तो राज्य चाहिए ही नहीं। तो राजा ने थोड़ा समझा कि ये गुरु के पास रखना चाहिए। तो बोला आप मेरे पुत्र को पढ़ाएंगे। बोला पढ़ाऊंगा, परंतु मेरी एक शर्त है। अगर पढ़ते पढ़ते वो मर जाए तो भी मैं जिम्मेवार नहीं होगा। बोला मर जाए, पढ़ते पढ़ते कोई मरेगा कैसे? बोला भाई मेरी तो पढ़ाई ही ऐसी है। तो राजा को तो दिल नहीं हुआ, पर फिर राजकुमार ने बोला फिर मुझे तो ऐसी ही पढ़ाई पढ़ने की है, चैलेंजिंग है, ठीक। तो उसको रख दिया गुरु के पास। कुछ दिन बीत गए तो गुरु तो कुछ बोले ही नहीं, कुछ पढ़ावे ही नहीं। तो राजकुमार से फिर रहा नहीं गया, बोला गुरु जी कुछ पढ़ाइए तो सही। बोला अच्छा पढ़ना है, चलो आज से शुरू तुम्हारी पढ़ाई। बोला ठीक है, क्या पढ़ाई? तो कहते आज से अभी मैं तुमको सारे दिन में कभी भी हाथ में सोटी लिए हुए थे, डंडा लिए हुए थे, तो कहा ये डंडे से मैं कभी भी आपको मार सकता हूं और आपको अपने आप को बचाने का ये है लेसन। कहता है अच्छा ऐसा लेसन है, ठीक है। तो एक दो दिन में तो बहुत मार पड़ी उसको, क्योंकि कभी भी वो आके मार सकता है, पर धीरे 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 उसने अपने आप को ट्रेन कर लिया। फिर वो कभी भी आवे गुरु तो अपने आप को बचा सकता था, इतना उसका ध्यान हो गया। अच्छा कुछ समय के बाद फिर गुरु ने कहा अच्छा तुम्हारा पहला लेसन पूरा हुआ, अभी दूसरा लेसन है। अभी मैं तुमको एक तलवार से मारूंगा, बुट्ठी तलवार से, लकड़े की तलवार से मारूंगा, पर फिर भी। तो कहते ठीक है, पर क्योंकि अभ्यास हो गया था तो फिर वो अपना हर उसका घाव बचाने लगा। अच्छा फिर कुछ समय बीत गया, फिर गुरु ने कहा अभी मैं तुमको रियल तलवार से कभी भी मार सकता हूं। वापसू जी अगर वो मिस किया तो क्या होगा उसका हाल? परंतु वो इतना अपने आप में ट्रेन हो गया था कि गुरु कभी भी उसको आवे सारे दिन में, कभी भी कहीं भी हो कभी भी आवे तो भी वो अपने आप को बचाने में सक्षम रहा। अच्छा कुछ समय बीत गया, अब गुरु कहते हैं अभी ठीक है दिन में तो तू पास हो गया, अभी रात को मैं कभी भी आ सकता हूं। तो शिष्य कहते हैं रात को मैं क्या करूंगा, रात को तो सो जाता हूं, दिन में तो फिर भी जागता हूं तो ध्यान रखूंगा, रात को क्या करूंगा? कहते ठीक है तुम जाओ। वो गया, फिर उसके रूम में कुछ शिष्य सोए हुए थे, गुरु जी रात को उसके रूम में गए, उसके नाम की आवाज दिया, वो उठा, उसे कुछ बातचीत किया, फिर बोला अच्छा तुम सो जाओ कल बात। दूसरे दिन सभी को बुलाया गुरु जी ने, सभी शिष्यों को बुलाया, सबको पूछा मैं कल तुम्हारे रूम में आया था, कमरे में आया था, पता है तुमको? सबने बोला ना भाई हमको नहीं पता। राजकुमार से पूछा तुम्हारे कमरे में आया था पता? बोला हाँ पता है ना, आपने मेरे नाम की जो आवाज दिया और मेरे को जगाया तो मैं तो जागा था ना, मुझे पता है ना। तो बोला इसका मतलब ये है कि रात को भी तुम अपने नाम के लिए जागृत हो ना, तुम नींद में थे पर मैंने तुम्हारा नाम पुकारा तो तुम उठे ना, तो तुम जागृत थे ना, यही जागृति तुम्हें अभी अपने आप में लानी है। तो कहते ठीक है, और धीरे 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 उसने वो भी जागृति लाई कि रात को कभी भी गुरुजी आवे और तलवार मारे तो भी वो अपने आप को बचा सकता था। फिर एक दिन ऐसे हुआ कि गुरुजी वो तलवार बाजू में रख करके पौधों को पानी पिला रहा था और वो राजकुमार पीछे से आ रहा था। उसके मन में संकल्प आया कि गुरु मेरे को तो मारता रहता है, आज मैं उसको मार के भी देखूं। तो गुरुजी ने बिना उसके सामने कहा कि बेटे ऐसे विचार मत करो, तुम तो जवान हो, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं। तो शिष्य को लगा कि अभी और पढ़ना बाकी है, ये तो केवल अपने प्रति जागृत नहीं है परंतु मेरे विचारों के प्रति भी जागृत है। तो बात क्या है जागृति की, अवेयरनेस, जो बाबा में कहते माया कभी भी आवे तुम्हें क्या करना है, माया का काम क्या है, वार करना, और हमारा काम अपने आप को बचाना दिन में भी और रात को भी। बाबा कहते हैं तुम्हारा तुम्हें अपनी स्थिति को ऐसी बनानी है जो रात को सपन में भी माया ना आवे, माया ना आवे। माया अर्थात देहभान, माया क्या है, कोई व्यक्ति नहीं है, है ना, माया का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, परंतु क्या है, देहभान। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि हमें अपने सोच से अपने विचारों के प्रति हमें जागृत रहना है। हमारे मन में क्या आता है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। बात तो है, बाबा कहते कि तुम्हें अपने विकारों पर विजय प्राप्त करना है, परंतु हर विकार का भी कारण क्या है? देहभान। विकारों का विस्तार बहुत है, परंतु हर विकारों का मूल जो है वो क्या है? देहभान है। इसलिए हमें जो जागृति लानी है अपने आप में, वो देहभान न आवे उसके प्रति जागृति लानी है। और वो जागृति लाने के लिए बाबा ने हमें युक्ति बताई है, विधि बताई है। वो विधि चिंतन की ही विधि है, सोच की विधि है। बाबा ने हमें कहा है कि बच्चे, सबसे पहले बाबा ने हमें कहा कि बच्चे तुम ही देवता थे। तुम्हारा मूल वतन कौन सा है? मूल वतन कौन सा है? महसूस होता है खाली शब्दों में जवाब नहीं, ऐसा लगता है कि मेरा मूल वतन, सोचिए मेरा अर्थात किसका? मुझ आत्मा का मूल वतन वहां है। बाबा ने कुछ दिनों के पहले ही कहा था कि वो पवित्र आत्माओं का वतन है। वो क्या है? पवित्र आत्माओं का वतन। तो हमें अपने आप में खुद को वहां महसूस करना है। हमने अपनी जर्नी, इस कल्प की जर्नी हमने कहां से शुरू किया? अपने घर से। तो बाबा कहते वहां, जैसे बाबा ने भी मूली में कहा था कि वहां नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार पद की प्राप्ति होगी, पर नंबर वार पवित्रता अनुसार परम धाम में स्थान मिलेगा, है ना? जितना जितना हमारी स्थिति बाप समान होगी, उतना उतना हमें बाबा के नजदीक समीप स्थान मिलेगा। तो सोचिए कि मैं वहां हूं, अपने वतन में, और वतन से फिर मैं नीचे आ रहा हूं। तो बाबा ने कहा था नंबर वार समय अनुसार आत्माएं नीचे आएगी, है ना? नंबर वार पवित्रता अनुसार वहां स्थान लेगी, फिर नंबर वार समय अनुसार आत्मा नीचे आएगी। तो चिंतन कीजिए कि हम बाबा के पास है परम धाम में। आप सोच सकते हैं परम धाम को? सोच सकते हैं स्वयं को? ज्योति बिंदु स्वरूप सोच सकते हैं? सोच सकते हैं? सोचिए, अपने आप को सोचिए कि मैं परम धाम में ज्योति बिंदु स्वरूप में स्थित हूं, और वहां से फिर नीचे आ रहा हूं इस दुनिया में। कैसे आएंगे? कैसे आएंगे? हाँ, चमकता हुआ सितारे के रूप में हम नीचे आते हैं। नीचे आके कहां जाएंगे, है ना? वो जो फोर्स है, वो जो फोर्स है, किसका फोर्स है? एक फोर्स है आत्मा के अपने पार्ट का, दूसरा फोर्स है माँ बाप के प्यार का, है ना? तो वो फोर्स से आत्मा खुद को महसूस करना है। बाबा ने जो कहा है ना कि भाई सबसे ज्यादा इफेक्टिव चिंतन जो है वो है ये सृष्टि, इसको ही कहते सृष्टि चक्र का। सृष्टि चक्र इन जनरल है, वो हमें पता है, परंतु ये किसका चक्र है? मेरा अपना। तो मैं कैसे आत्मा इस सृष्टि पर आती हूं, और महसूस कीजिए कि आत्म रूप में स्थित होने के बाद, है ना, आपको, आप में से किसी ने शायद वो एक बुक, छोटी सी बुक थी, बहुत पहले थी, द वॉयजर्स करके, किसी ने पढ़ी हो तो बहुत अच्छी अपनी ही बीके की बुक है, थी, अभी तो शायद अवेलेबल है कि नहीं है, पर बहुत अच्छा था कि कैसे आत्मा ऊपर से आती है, फिर यहाँ आके फील कर हम कहाँ जाएंगे, इतने बड़े विश्व में आत्मा कहाँ जाएगी, अकेली तो आती है ना। हमारी जर्नी कैसी है, इंडिविजुअल, व्यक्तिगत है ना, कोई किसी के साथ होता है, कोई किसी के साथ होता है, आत्मा अकेला ही आता है ना। तो जो फील कीजिए, महसूस कीजिए, है ना, हमें अपने आप को चिंतन में महसूस करना है कि मैं आत्मा ऊपर से आई और स्वर्ग में, है ना, गर्भ महल में मैं आत्मा प्रवेश कर रही हूं। गर्भ जेल और गर्भ महल में क्या अंतर है, हाँ, पर क्यों ऐसा लगता है, वही मुख्य बात है, कॉन्शियसनेस का ही फर्क है ना। अभी अभी देखो कलयुग में देह भान है तो आप देखिए कि कितने रूमों का मकान होगा तो भी दो भाई एक साथ रह नहीं सकते हैं, है ना। जब आत्मा भाव है, क्योंकि देह भान है तो उसको गर्भ में बिल्कुल बंधन महसूस होता है, और वही आत्मभाव आ जाता है तो उसको बहुत, क्योंकि आत्मा को जगह ही नहीं चाहिए, आत्मा को जगह कितनी चाहिए, बाबा कहते हैं परम धाम में आत्मा को तो बिल्कुल जगह ही नहीं चाहिए, तुम्हारे यहां जगह की मुसीबत है देह भान के कारण, है ना। आप देखो देह भान जिसको है वो एक बैठा होगा ना बहुत बड़ी जगह में तो भी दूसरे को आने नहीं देगा, है ना, लेकिन जगह कहां है हमको, फिर और जरा आराम से बैठ जाएगा और किसी को आने नहीं देगा, बैठने नहीं, देहभान। और आत्मभाव होगा तो कितनी भी थोड़ी जगह होगी, आओ बैठो बैठो कोई बात नहीं, आप भी बैठ सकते, आप भी बैठ सकते। इसलिए कहा जाता है कि दो राजा बहुत बड़ी रियासत में साथ नहीं रह सकते हैं, और साधु एक छोटी सी झोपड़ी में साथ में रह सकते हैं। दो राजा रियासत में भी, बहुत बड़ा राज्य होगा तो भी दो राजा एक साथ नहीं रह सकते, तो कॉन्शियसनेस की बात है। इसलिए आत्मा आराम से रहती है और फिर वो बाबा कहते हैं वो अपने स्थान को, अपने दैवी दुनिया को महसूस करना है, जैसे बाबा कहते हैं कि वो इतना सुख है जो सुख कोई सोच नहीं सकता है, इतनी सुख की दुनिया है, हर प्रकार का सुख है। जैसे बाबा बीच बीच में मूल्यों में कहते हैं कि, जैसे कल ही शायद मूल्य में था कि वहां पक्षी भी इतने अच्छे अच्छे होंगे, अच्छे तो होंगे तुम्हारे आज, यहाँ तो चिड़िया होगी वो आपको देख के दूर चली जाएगी, उड़ जाएगी, वहां तो अच्छे अच्छे पक्षी होंगे वो भी आपके आजू बाजू घूमते रहेंगे, फिर कहता है वो गंध भी घर में आके नहीं करेंगे, सब कुछ कायदे अनुसार। आप देखो छोटी सी बात है पर हर चीज, मतलब आप सोचिए, और छोटी से छोटी भी असुविधा वहां नहीं होगी, दुख नहीं होगा, अशांति नहीं होगी, कुछ भी सुख होगा, दुख अशांति की तो बात ही नहीं, पर सुख की पराकाष्ठा की बात है। तो वो अपनी सत्वप्रधान सुखमय स्थिति को मुझे महसूस करना है, महसूस करना है कि क्या हर प्रकार का, तन का सुख हाईएस्ट, मन कैसा होगा वो अपने आप में सोचना होगा कि हमारा मन कितना सुख से भरा हुआ, प्यार से भरा हुआ, है ना, सहयोग की भावना से भरा हुआ, आनंद से भरा हुआ, कैसा मन होगा वो अपने व्यक्तित्व को महसूस करना है। हाईली एलिवेटेड थॉट्स, वो महसूस करना है मुझे कि मैं वहां किस रूप से हम होंगे, क्या हमारा परिवार होगा, क्या हमारे एक दूसरे के प्रति प्यार होगा, क्या व्यवहार होगा, क्या भाव होगा, वो सब महसूस करना है। और बाबा जो हमें कहते हैं फिर भाई वहां तो हम अमर है, अमर है अर्थात मृत्यु का कोई भय नहीं है। भय तो नहीं है, भय शब्द वहां नहीं होगा, पर आनंद है। क्या आनंद है? क्यों आनंद है? कम ये शरीर छोड़कर अभी फिर से दूसरा नया छोटा सा शरीर धारण करेंगे। एक शरीर छोड़ करके फिर दूसरा शरीर लेते हैं, इस बात की महसूसता में आना है। तो बाबा कहते हैं कि ये जब आप याद करेंगे, 84 वर्ष, 84 जन्म है ना, तो 84 जन्मों में हमने इतने हमारे माता पिता भाई मित्र पति पत्नी बच्चे जो भी हो, आप देखो परिवार तो कितना बड़ा परिवार होगा। एक छोड़ के एक एक जगह छोड़ा, एक जन्म छोड़ा, तो फिर तुरंत दूसरे जन्म में फिर पहले वाला याद रहेगा? याद रहेगा? क्या कहते हैं, आप मुए मर गए दुनिया। कोई मरने के बाद वापस भी आ जावे तो भी कोई स्वीकार करेगा? हाँ, यहाँ आए हैं तो याद आएगा। वो बाबा ने याद दिलाया, बाबा ने हमें याद दिलाया कि आप कौन हो, आप वही हो। तो एक है युक्ति कि हम इस प्रकार के स्व के चिंतन में रहे, आत्मचिंतन में। स्व अर्थात आत्मा, हर आत्मा अपने चक्र के चिंतन में रहे। हर आत्मा का अपना अपना सृष्टि चक्र है ना। तो हम जितना वो चिंतन में रहते हैं उतना हमारी स्थिति शक्तिशाली बनती है। इसको कहते हैं होलसेल पुरुषार्थ। बाबा क्या कहता है, बीच में कहा था ना मुरली में बाबा ने, कि एक है होलसेल पुरुषार्थ और दूसरा है रिटेल। अभी आजकल दुनिया में लोग दोनों करते हैं, आजकल दोनों करते हैं, हमें भी दोनों ही करना पड़ेगा। क्योंकि सारा दिन हम इतना अटेंशन रखे और आत्मचिंतन में रहे, वो रहने वाले नंबर वन ले गए, कौन? बाबा और मम्मा। कॉन्स्टेंट, सतत सतत। एक बात मुझे बहुत याद रह गई, अभी आतम भाई अपने उसमें सुना रहे थे, तो कहते हैं पहली बार मैं जब यहाँ पर आया पांडव भवन में, तो खाली बीच की जो दादी का ऑफिस रूम था वही वाला पोर्शन था, बाकी कहाँ भी कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ था। जहाँ अभी ट्रेनिंग सेंटर है वो भी शांति स्तंभ है, ट्रेनिंग सेंटर कुछ भी नहीं बना था, ओपन ग्राउंड था। तो कहता है जब मैं पहली बार यहाँ आया तो बाबा क्रिकेट खेल रहे थे, साकार बाबा क्रिकेट खेल रहे थे। तो जैसे मैं आया, कहते हैं उस समय तो बहुत कम लोग कैमरा रखते थे, पर कहते हैं मेरे पास कैमरा था, मैं बहुत शौकीन था, तो मैं जाके फोटो खींचने लगा बाबा का। तो बाबा ने कहा रुको, मेरा फोटो तो आ नहीं सकता, तो किसका फोटो खींच रहा है? मेरा फोटो तो आ नहीं सकता और ये देह तो कोई काम का नहीं, फोटो का फायदा क्या? आप सोचो। तो भले क्रिकेट खेल रहे थे पर तो भी तुरंत क्या कहा, मेरा तो फोटो आएगा नहीं। आप देखो कॉन्शियसनेस, देखो मेरा तो फोटो आएगा नहीं। और हमें क्या लग, हमारी कॉन्शियसनेस क्या है, हमें अपने आप को चेक करना है ना। हमारा तो कोई फोटो आज भी लेगा अगर, तो हम थोड़ा स्माइल करके ले लीजिए फोटो, कोई बात नहीं। हाँ, मैं भी तैयार हो क्या हो, ये भी हो सकता है। आप देखिए कॉन्शियसनेस है ना। तो बाबा का सत्य चिंतन, बाबा अपने आप में स्वचिंतन में लिखते थे, आपको पता होगा, उससे लोगों ने गीत भी बनाए हुए हैं कि अपने सारी कर्मेंद्रियों का दरबार बुलाते थे, है ना। तो दूसरी युक्ति है कि हम अपनी कर्मेंद्रियों के साथ बात करें, कर्मेंद्रियों को चेक करें, है ना, वो कहाँ कहाँ जाती है, ऐसा नहीं हमें पता ही ना चले, हमें पता ही नहीं चले हमारा मन कहाँ जा रहा है, आंखें कहाँ जा रही है, कान कहाँ जा रहे, कान कितने दूर तक जाते हैं ना, जाते हैं कि नहीं जाते, कोई दूर दो व्यक्ति बात करते होंगे तो भी आपका ध्यान, आप यहाँ किसी से बात करते हैं, दो व्यक्ति बात करते होंगे आपका ध्यान बिल्कुल कान वहां होंगे, क्या बात करते हैं आप सोचिए। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि हम अपनी कर्मेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों का दरबार बुला करके, मन बुद्धि संस्कार को साथ में लिए हुए हम अपने आप को हमेशा देखें। बाबा ने ये कंटिन्यूअस किया, बाबा ने, साकार बाबा ने ये कंटिन्यूअस किया, समझा। इसलिए आत्मभाव में स्थित हो गए। तो हमें भी क्या करना है, देखना है हमारा ध्यान। हम जब योग में बैठते हैं तो जिसको बाबा कहते हैं कि पुरुषार्थ करना है, मेहनत कर, बाबा कहते हैं मेहनत करनी है। मेहनत क्या है? सीढ़ी तो ऊपर नीचे नहीं करना है, क्या मेहनत करनी है? तो जब हम बाबा की याद में बैठते हैं तो मेहनत इस बात की करनी है कि हम स्वयं को इस शरीर से भिन्न आत्मा महसूस कर सके। अच्छा, कर सके उसके लिए क्या करना है? इंडिविजुअली हम लोगों को तो सिखाते हैं, बड़े आराम से बोल भी जाते हैं, वर्णन भी कर जाते हैं, परंतु ये है महसूस करने की बात कि मैं आत्मा हूं और इस खिड़कियों द्वारा देख रहा हूं। ऐसा लगता है? कानों के द्वारा मैं आत्मा सुन रहा हूं। सोच ये चलानी है कि सुनने वाला, अभी भी सुनने वाला कान सुनते हैं क्या? कौन सुनता है? आत्मा नहीं बोलो, मैं सुनता हूं। समझा? कौन सुनता है? मैं। और मैं कौन? मैं आत्मा। कैसी आत्मा? कैसी आत्मा? ज्योति बिंदु। मैं, आप सोचिए, आपको लगता है कि मैं प्रकाश बिंदु हूं और कान से, कान के द्वारा इन्फॉर्मेशन आ रही है, इन्फॉर्मेशन आ रही है ना, हम सुन रहे हैं और सुन रहे हैं कानों के थ्रू और फिर आत्मा अपने आप में समझ रही है ना। हम देख रहे हैं खिड़कियों के द्वारा और जो देख रहे हैं वो समझ रही है आत्मा, है ना। मैं क्या देख रही हूं, मैं क्या सुन रही हूं। जैसे जैसे इस हॉल में हम बैठे हैं, हॉल में बैठे हैं ना, हॉल में बैठे हुए हम अपने आप को महसूस कर सकते हैं कि हाँ हम हॉल में बैठे हैं। इन दीवारों को हम अपने आप से अलग महसूस कर सकते हैं। उसी प्रकार इस शरीर की दीवारों को हम अपने से अलग महसूस करें, अपने आप को ज्योति बिंदु आत्मा महसूस करते हुए अपने आप को इस शरीर से भिन्न महसूस करें। बाबा कहते हैं कपड़े जितने टाइट होंगे उतना इसको उतारना बहुत मुश्किल होगा। कौन सा कपड़ा? शरीर रूपी कपड़ा, है ना। टाइट कैसे बनता है? देहभान से टाइट बनता है। और देहभान क्या है? मैंपन और मेरापन। मुझे अच्छा लगता है और मुझे अच्छा नहीं लगता है, ये है देहभान। उससे टाइटनेस बढ़ती है। इसीलिए फिर जो हमारा पुरुषार्थ है, एक एक बात का हमें पुरुषार्थ करना है कि मन हमारा, बाबा ने इसलिए हमें सार रूप में कहा कि मन मना भाव। सार क्या कहा? मन मना भाव। कहा जाता है कि भाई तुम रहो संसार में पर तुम्हारा मन मेरे पास होना चाहिए। क्या कहेंगे, मन बाबा के पास हो सकता है? तो नहीं होगा। मन अपने पास होगा तो हम बाबा में मन लगा सकते हैं, है ना। मन मेरा अपना होगा तो ही हम बाबा में लगा सकते हैं। मेरा मन मेरे ही कहने में नहीं है अगर, तो बाबा में लगेगा, लगेगा नहीं। तो इसीलिए हमारा जो पुरुषार्थ है, फिर जो बाबा रोज हमें चेकिंग करवाते, चेक एंड चेंज, वो जो हमारा पुरुषार्थ है वो ये है कि हमें रोज देखना है। आज बाबा ने मुरली में कहा है कि रजिस्टर रखना है अपना, कि मेरा मन बुद्धि कहां कहां जाता है। क्योंकि मन जहां जाता है, मन की विचित्रता या विशेषता जो भी कहो, वो ये है कि मन केवल जाता है इतना नहीं है, वहां से कुछ लेके वापस आता है, है ना। जहां भी जाएगा, किसी वस्तु में जाएगा तो ममत्व लेके वापस आएगा, किसी व्यक्ति में जाएगा तो भी कोई ना कोई बात लेकर के वापस आएगा, और वो सब यहां स्टोर हो जाता है। और जो मन में आ जाता है उसी बारे में हमारे विचार चलते हैं, जिसका प्रभाव हमारे पर पड़ जाता है। आपका अनुभव होगा कि आपने, समझो रास्ते चलते व्यक्ति को देखा, रास्ते से बहुत व्यक्ति जाते आते हैं, हमारा ध्यान नहीं होता, परंतु अगर आपने किसी को देखा और आपने सोच लिया कि ये बहुत अच्छा लगता है या बहुत बुरा लगता है, कुछ भी हो, कोई एकदम कद्रुपा भी हो सके, कैसा व्यक्ति है, अगर आपको मन में आ गया तो आपका अनुभव होगा कि आपको फिर से वो याद आएगा। कोई आपको बहुत सुंदर लगा तो वो भी फिर से याद आएगा। जिस बात का मन पर प्रभाव पड़ जाता है, मन जरा सा भी लग जाता है, जरा सा, एकदम जरा सा लगता है तो भी मन उसको पकड़ लेता है। इसलिए बाबा कभी कभी कहते हैं ये दुनिया कैसी है, छीछी, है ना। बाबा कहते हैं इस दुनिया को क्या कहते हैं, ये छीछी दुनिया है। हम छीछी किसको कहते हैं, छोटे बच्चे को कहते हैं भाई छीछी मत हाथ लगाओ, जो चिपकता है, जो चिपकता है ना हाथ से, हाथ में, वो उसको हम छीछी कहते हैं। तो ये दुनिया कैसी है, चिपकने वाली, ये दुनिया चिपकने वाली है, छीछी दुनिया है। किसको चिपकती है, मन को। तो मन को अगर चिपक गई तो फिर मन बाबा में लग नहीं सकता है, है ना। और बाबा में मन लगेगा नहीं तो देह बांध हमारा टूटेगा नहीं, मन की स्थिति, स्व की स्थिति बनती नहीं है, है ना। इसलिए हमारा प्रैक्टिकल लाइफ में पर्सनल लाइफ में, जिसको प्रैक्टिकल पर्सनल लाइफ जिसको हम कहते हैं, कि बाबा के ज्ञान की जो बात है, बाबा ने जो कहा है, वो चिंतन की जो बात है, वो कहां पर अप्लाई होनी है, पर्सनल लाइफ में, व्यक्तिगत जीवन में। कई बार ऐसा सुनने में आता है, कभी समाचार होता है, कई लोग ऐसे होते हैं जो अपना बाबा के ज्ञान में तो पक्के होते हैं, क्लास करते हैं, मुरली सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, पर अपने घर जाकर के व्यवहार इतना उचित नहीं होता है, तो वो क्या कहते हैं, आपने क्या ज्ञान लिया। आपको भी अनुभव होगा, बच्चे भी सुना देते कि आपने, आपको बाबा ये कहते हैं क्या, आपने थोड़ा भी गुस्सा किया तो बच्चे याद दिलाएंगे, बाबा ये सिखाता है क्या, है ना। तो हमारा प्रैक्टिकल व्यवहार बहुत इंपॉर्टेंट है, हम क्या करते हैं, और उसका जो आधार है वो जैसे अभी कहा कि हमारी सोच पर है। हम मन को, इसलिए जो बाबा कहते चेक एंड चेंज, जो पुरुषार्थ करना है वो हमें सारे दिन का यही पुरुषार्थ करना है, जिसको बाबा कहते हैं गुप्त पुरुषार्थ है, और ये मेहनत की बात है, इसको आध्यात्मिक पुरुषार्थ, इसको रूहानी पुरुषार्थ कहा जाता है, जिसको हम अवेयरनेस, जागृति, कॉन्शियसनेस कहते हैं। हमें घड़ी 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 छोटी छोटी बातों में अपने आप को जागृत करना है। जरा भी कोई बात में हमें लगा कि हमको बहुत अच्छा लगा तो जागृत हो जाएगा, बहुत अच्छा लगा मतलब क्या, मतलब क्या, कोई चीज खाने की आपको बहुत अच्छी लगी, बी अवेयर, वो कहीं कहीं घरों में लगाया हुआ था, बी अवेयर ऑफ। तो हमें हमें अपने आप में ये लगा दिया, बी अवेयर ऑफ। कोई के प्रति आपको बहुत अटैचमेंट है, इसके बिना नहीं चलेगा, बी अवेयर ऑफ, है ना, ध्यान दीजिए। किसी के प्रति आपको बहुत घृणा है, घृणा भी बंधन है और अटैचमेंट भी बंधन है। बीच में बाबा ने मूली में कहा था, अगर आपको किसी के प्रति घृणा है तो वो भी आपको याद आता रहेगा, है ना, बार बार। जैसे वो महाभारत में कहते हैं ना, भाई द्रौपदी ने एक ही बार कहा कि अंधे की औलाद अंधे, कहा एक बार, उसने सुना कितनी बार, हजारों बार सुना, अंधे की औलाद अंधे, अंधे की औलाद अंधे, उसे तो एक ही बार कहा था, परंतु क्योंकि वो इतना उसको इफेक्ट हो गया, उसको बार 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 वही सुनाई पड़े। हमारी भी वही हालत होती है, जिससे आप जिसके साथ आपका अटैचमेंट होगा जरा सा भी, उसने अगर थोड़ी सी बात कुछ कह दी तो क्या होगा, मन में बहुत दुख होगा, मन अशांत हो जाएगा, बार बार याद आएगा, उसने कैसा कहा मुझे, मेरे साथ कैसा व्यवहार किया। आप योग में बैठेंगे, बाबा को याद करेंगे, बाबा हट जाएगा, उसका चेहरा आ जाएगा, उसने कैसा मेरे साथ किया, होता है ना, आप सोचिए। उससे जागृत हो जाओ कि ये अटैचमेंट है, आत्मा का अटैचमेंट है, वहां हमें जागृत हो जाना है, मन को फ्री करना है। मन को क्या करना है, फ्री, मन को फ्री करेंगे तो मन मनाभाव हो सकेंगे। और बाबा ने कहा जितना आप स्वयं को आत्मनिश्चय करके मुझे याद करेंगे, उससे ही आत्मा में पावर बढ़ती है, बैटरी चार्ज होती है ना, आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज, चार्जिंग कब होती है, जब हम स्वयं को आत्मनिश्चय करके, भले थोड़ा, बाबा ने कहा थोड़ा भी अगर आप आत्मभाव में आके बाबा को याद करते हो, बैटरी फटाफट चार्ज हो जाती है। तो जैसे देवान आया, देवान आया नहीं, आत्मभान चला गया तो भी चार्ज होना बंद हो जाती है, और अगर देह अभिमान आ गया तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। रॉन्ग कनेक्शन से क्या होता है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। तो हमारे पास अभी इतनी विकारों की बात नहीं है, पर देह भान की बात है। अगर विकार की बात है तब तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, फिर तो उसको चलना मुश्किल होता है। परंतु अभी विकारों की बात नहीं है, देह अभिमान की बात नहीं है, परंतु क्या रह गया है, देह भान। पर देह भान में भी हम इतना स्वाभाविक रहते हैं, बहुत स्वाभाविक, हमें लगता नहीं है कि ये देहभान है, रूटीन चलता है, सुबह से उठते हैं, चलो उठ जाते हैं, ऑफिशियली बाबा को याद कर लेते हैं, जब योग में बैठते हैं तब तो चलो आत्मिक भाव रहता है, फिर उठे तुरंत, जैसे बाबा कहते क्लास से बाहर निकले ओम शांति, चला जाते, पता है, ज्ञान है, पता है मैं आत्मा हूं, वो सब कुछ पता है। अभी आप अगर आपको पूछे तो आप हर बात आत्मा की बता देंगे, है ना, पता है, पर फिर भी ध्यान नहीं है, अटेंशन नहीं है। वो वाली बात सुने ना, माया आती है पर हम जागृत नहीं है, आके मार के भी चली जाती है तो भी पता नहीं चलता है, तो भी हम खुश है, तो भी हम खुश है, आराम में है, नहीं। तो इसलिए बाबा कहते हैं चिंतन सबसे बड़ी चीज है, जितना हम इस बात का चिंतन करेंगे। और तीसरी बात जो हम दुनिया में लोगों को सुनाते हैं, बहुत कॉमन है, पर वो हमें हमें अपने आप में भी उसका बार बार चिंतन करने की आवश्यकता है। वो कौन सी बात, जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ, तीन यूनिवर्सल ट्रुथ है जो हम लोगों को सुनाते हैं, सबको पता होता है, हमको भी पता है, आपको भी पता है, सबको पता है, पर हम उस बात में जागृत नहीं होते हैं, कॉन्शियस नहीं होते हैं। वो कौन सी बात, एक पहली कि भाई हम आए हैं तो हमें फिर जाना भी है, जो आया है उसको जाना है, वो इन जनरल हुआ। फिर मुझे अपने लिए क्या सोचना है, मुझे भी जाना है। कोई है ऐसा कहने वाला कि मैं अपनी इच्छा नहीं है जाने की, भी छोड़ो, ऐसा है कोई? हो सकता है ऐसा नहीं। मैं आत्मा आई हूं इस पाठ में, अभी मुझे फिर वापस जाना भी है। तो कौन आया और किसको जाना है, इस बात के चिंतन में रहना है। ऐसी ऐसी बातों को याद करना है, समझा? ऐसी ऐसी बातों को याद करना है। दूसरी बात, क्या लेके आया था और क्या लेके आए थे? कुछ नहीं लेके आए थे। हाँ, खाली नहीं जाना है, है ना? तो व्यक्ति अपना भाग्य लेके आता है और भाग्य बनाकर जाता है। स्थूल कुछ भी लेके नहीं जाता, पर क्या लेके जाता है? भाग्य। और भाग्य बनता है, हाँ, कौन सा कर्म? श्रेष्ठ कर्म, अर्थात क्या? इन शॉर्ट, समझ में आने वाली बात, हाँ, देना है, सुख देना है, बस। इन शॉर्ट, सबको सुख देना है, जितना दिया उतना भाग्य बन गया। कोई के पास कुछ भी ना हो तो भी वो सुख दे सकता है, दे सकता है। एक छोटी सी स्माइल से भी आप सुख दे सकते हैं, एक हेलो करके भी सुख दे सकते हैं, और मुंह चढ़ा के भी दुख दे सकते हैं। आपने कुछ नहीं किया, आप सोचेंगे कि मेरा मुंह, मैं जो जैसा रखना चाहूं रखूं, आपको क्या है भाई, है ना? मैं, मेरे को मुंह चढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, तो आपको बात तो ठीक है भाई, तुम्हारा मुंह है तो तुमको जो रखना है सो रखो। पर फिर भी है ना, एक व्यक्ति रास्ते में मिलता है, हिल नहीं हो सकता है। तो छोटी छोटी बातें हमारे व्यवहार में, छोटी छोटी बातें जो सुख दे सकती है, मुफ्त में, हम फ्री में सुख दे सकते हैं, है ना? और सुख दे के भाग्य के अधिकारी बन सकते हैं। तो हमें क्या लेके आए थे, हिसाब किताब साथ लेके आए थे? भाग्य में दोनों बातें होती है, हिसाब किताब, सुख दुख। पर अभी जाना कैसे है? केवल सुख का हिसाब लेके जाना है, दुख का समाप्त, और केवल, क्योंकि सत्युग में क्या होगा? केवल सुख होगा। तो सुख कैसे मिलेगा? देने से मिलेगा, भाग्य बनाने से मिलेगा। तो हम क्या लेके आए थे और क्या लेके जाना है, वो हमेशा याद। और तीसरी बात कौन सी? अकेला आया था और अकेला जाना, ये बहुत बड़ी बात है। हर आत्मा की आप ये सोच चलाना, चिंतन करना, इससे आत्मा भाव बहुत बढ़ता है। ये चिंतन करना कि हर आत्मा की व्यक्तिगत जर्नी है, ये जो हमारी 84 जन्मों की जर्नी है, वो हर एक आत्मा की कैसी है? इंडिविजुअल है, व्यक्तिगत है। तो इसीलिए इस बात को हम जितना सोचेंगे और जितना चिंतन करेंगे, उतना हमारा आत्मभाव बढ़ता जाता है, आत्मभाव बढ़ता जाता है। जैसे बाबा पहले हमें कहते थे अव्यक्तवाणी में भी, कि आप अपना ही रूप देखो, कि अब मैं आत्मा शरीर से बाहर हूं और अपने आप को देखो, महसूस करो, आत्मा को अपने आप में महसूस करना है। एक लास्ट में एक छोटी सी अनुभव की बात बताती हूँ, आत्मा अनुभूति की बात है, अपने हिसाब से नहीं, दूसरे हिसाब से। एक पेशेंट मेरे पास आया करती थी, वैसे कैंसर की पेशेंट थी, गले का कैंसर उसको हुआ था। एक दिन आके मुझे उसने कहा कि मेरे को एक वंडरफुल अनुभव हुआ, मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि हम लोग तो स्पिरिचुअल है। बोला आप स्पिरिचुअल है तो मैं आपको ये अनुभव सुनाना चाहती हूँ, सुना। तो कहती मेरे को, मतलब नेक्स्ट डे ही आई थी मेरे पास, बोला कल, कहता कल ऐसा हुआ। कहती है कि वो बहन, उसने कहा कि मैं घर के बाहर जो आंगन होता है वहां पर बर्तन साफ कर रही थी, तो कैंसर तो था ही, और ट्रीटमेंट भी चल रही थी, पेन भी होता था, परंतु बच्चे छोटे थे इसलिए वो थोड़ा वो सहन करके भी अपना जी रही थी अच्छी तरह से। वैसे काउंसलर थी, मतलब बड़ी पोस्ट में भी थी, तो कहती मैं बर्तन साफ कर रही थी, पेन तो था ही, एकदम से कुछ हुआ और मैं शरीर से बाहर, कहते बाहर जाके मैं बिल्कुल छत के ऊपर, मैंने महसूस किया कि मैं छत के ऊपर चली गई और शरीर गिर गया। कहती मैं देख रही हूँ शरीर गिर गया, और इतने में घर में अंदर में उसका पति और बच्चे लोग सभी थे, तो उसने देखा कि ये गिर गई, तो सब आए एकदम दौड़ के, सबने मालिश पालिश सब कुछ किया। और कहती है वो मैं देख रही हूँ कि सब लोग आए हैं, सब मालिश कर रहे हैं सारे शरीर में, और फिर एकदम झटका फिर से आया और फिर से मैं शरीर में चली गई। तो कहती है क्या है, ये तो अनुभव है। उसने फिर अपना अनुभव सुनाया कि मेरा एक ये अनुभव एक विचित्र है कि जब मैं शरीर में थी तो बहुत पेन था, परंतु जब मैं बाहर निकली ना तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा था और कहां भी कुछ पेन नहीं था। अब देखिए, तो मैंने कहा इसको ही कहते हैं आत्मा, शरीर में आत्मा होती है और आत्मा ही शरीर छोड़ के जाती है और आत्मा ही शरीर में आती है। आप देखिए, तो ये हमें भी अपने आत्मभाव को जागृत करना है, समझा। हमें ज्ञान है, शब्दों का ज्ञान है, पर हम क्योंकि हम चिंतन नहीं, चिंतन में इतना नहीं आते हैं, इसलिए वो अनुभूति में नहीं आते। और स्थिति की शक्ति जो है, जिसको शक्तिशाली स्वस्थिति कहते हैं, वो शक्ति का आधार अनुभूति है। और जितना शक्तिशाली स्थिति होगी, उतना आपको जितनी आत्मभाव होगा, आत्मभाव से स्वाभाविक रूप से आपकी संकल्प शक्ति बढ़ जाती है, उसको ही शक्तिशाली स्वस्थिति कहते हैं। और स्वस्थिति अगर शक्तिशाली है तो फिर परिस्थिति कुछ भी कर नहीं सकती। परिस्थिति आएगी परंतु परिस्थिति नीचे होंगी और स्वस्थिति ऊपर होंगी। तो इसलिए बाबा यही चाहते हैं हम सभी बच्चों से कि हम सब कुछ करते हुए, बाबा कहते खाओ पियो उठो बैठो मौज करो कुछ भी करो, परंतु कौन कर रहा है, मैं आत्मा कर रही हूँ, ये आत्मभाव को सतत, वो छूटे नहीं वो संकल्प। आज का आपका स्वमान कौन सा है, आत्मचिंतन ही होगा ना, तो आत्मचिंतन को छोड़ने का नहीं, सतत आप आत्मचिंतन करेंगे ना, संकल्प करेंगे आत्मचिंतन, आपका स्वाभाविक योग इतना अच्छा लगेगा कि आपको खुद को ही बहुत अच्छा लगेगा। पर चिंतन को पकड़ के रखने का है ना, तो फिर आप जो बाबा कहते हैं चेहरे और चलन से सेवा, तो ऑटोमेटिकली आपका रास्ता, कई लोग पूछते हैं कि योग हमारा अच्छा लग रहा है उसका उसकी प्रूफ क्या है, कैसे पता चलेगा, तो उसका यही पता है कि आप जितना जितना बाबा के साथ योग अच्छा लगाते हैं उतना, बाबा कहते हैं ना कि भाई तुम्हारे विकर्म विनाश हो रहे हैं, और इस उसका भी प्रूफ क्या है कि तुम्हारा ये रूहानी राह जो है वो निर्विघ्न बनता जाएगा। जितना जितना हमारा योग अच्छा लगता जाएगा उतना आपका रास्ता क्लियर होता जाएगा, आपको सहज रूप से आप पुरुषार्थ कर सकते हैं, सहज रूप से आपका योग लगेगा, सहज रूप से आपकी सेवा होगी, है ना। तो यही प्रूफ है कि हमारी स्थिति बहुत धीरे 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 अच्छी बन रही है। तो आप सभी पांडव भवन में भट्टी कर रहे हैं, आप सभी आत्माएं अपने इस रूहानी राह पर, है ना, बहुत अच्छी तरह से अनुभूति करते हुए आगे बढ़ते चलो, और आप एक एक के चेहरे और चलन से बाबा की प्रत्यक्षता हो, ऐसे आप सभी के प्रति बहुत बहुत शुभ भावना है। ओम शांति। स्मृति नहीं है, संस्कार है। स्मृति क्यों नहीं है, उसके तो बहुत बातें हैं, अभी समय हो गया इसलिए, पर स्मृति नहीं है, संस्कार इम्प्रिंट आत्मा में हो जाते हैं, उस अनुसार व्यक्ति व्यवहार करता है, संस्कार अनुसार सोचेगा भी उस अनुसार, कर्म भी उस अनुसार करेगा, व्यवहार भी उस अनुसार करेगा। बाकी स्मृति नहीं रहती है। मैं अभी डिस्कस कर रही थी बहनों के साथ कि शायद शरीर छोड़ना वो इतना मुसीबत की बात है, गर्भ में प्रवेश करके गर्भ में आत्मा को रहना इतनी मुसीबत की बात है, जन्म लेना इतनी मुसीबत की बात है कि सब कुछ भूल जाता है, है? दुख में व्यक्ति सब कुछ भूल, दिस इज माय थिंकिंग, पर इसलिए सब कुछ भूल जाता है, पर जो संस्कार है वो आत्मा को रह जाता है। कभी कभी बाय चांस कोई बहुत गहरी चोट अगर किसी को लगे, बहुत गहरी, तो कभी कभी किसी को पूर्व जन्म का याद रहता है, ऐसे कई किस्से देखे जाते हैं। परंतु बहुत करके इन जनरल हम संस्कार ले आते हैं, स्मृति छोड़ आते हैं। ओम शांति। अच्छा बना है, याद कहीं कहीं तो कई लोगों को तो कल खाना क्या खाया था वो भी याद नहीं रहता है, पर ध्यान नहीं है। इसका मतलब कि हमारा अटेंशन नहीं है तो याद नहीं रहता है। बाकी बाबा ने भी कुछ दिन पहले कहा था कि 5-6 साल के बाद जो भी किया है वो वास्तव में याद रहता है। 3-4 साल की बात। ओम शांति।
धन्यवाद निरंजना बहन जी। आज हम सभी को भाग्य बनाने के लिए तरीका समझ में आ गया, और उसके लिए हमको स्वस्थिति की 4 बातें हमने समझी आज। एक तो स्वलक्ष्य समझ में आया, स्वचिंतन, स्वाध्याय और स्वउन्नति हम जानते, पर एक सहज तरीका और सहज युक्ति ये समझ में आ गई, जो बहुत सरल सरल शब्द और सरल भाषा के अंदर ये हमने समझा। और हम जरूर इसका अध्ययन हम सब करेंगे, और ये प्रैक्टिकल हम अपनी भट्टी को न संपन्न बनाने के लिए आज की ये युक्ति अपनाएंगे। ओम शांति। धन्यवाद।